Sarvam Shaniya Vayavaya Udara Vilasahi Kesh Hasekshita Vama Shuktaya Hitatmano Ritta Pranam Sabhaktir Anitcha Tombe Gatiman Vimpuzum Rayunte. Upon seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. His senses are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor.
अनुवाद भगवान के मुस्कुराते और आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी सारी चेतना को खो बैठता है. उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में लीन हो जाती है. इस प्रकार अनिच्छित भी उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती
है. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. There are three divisions of devotees, first class, second class, and third class.
भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ.
Is what are you just, since everyone here speaks Hindi, just read it and I'll read myself.
कनिष्ठ श्रेणी के सभी भक्त मुक्त हो जाते हैं. श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान न होने पर भी मंदिर में विग्रह का अलंकार देखकर भक्त उसके ध्यान में लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है. इस तरह मात्र कृष्ण चेतना में अपने को स्थिर करते हुए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने ही मुक्त हो जाता है.
When seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. His senses are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor. His Grace Sriman Gaurasundara Prabhu has today instructed me very specifically to speak on this particular verse.
Sriman Gaurasundara Prabhu ne mujhe aagya di hai ki main is shlok ke upar pravachan karu.
Praying that he will bestow his auspicious blessings upon me, I will try to please him by offering this class at his lotus feet.
ये प्रार्थना करते हुए कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं आपका मैं ये उनको प्रसन्न करने के लिए ये उनके चरण कमलों में अर्पण करता
हूँ. We are reading the instructions of Lord Kapila Dev.
हम भगवान कपिलदेव की शिक्षाओं को पढ़ रहे हैं.
This particular chapter is entitled The Glories of Devotional Service.
इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग की महिमा.
We find the quality of an advanced devotee.
यहाँ पर भक्ति में आगे बढ़े भक्त के गुण बताए गए.
He is absorbed in the consciousness of Krishna.
वो कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं.
Such absorption is the quality that purifies our heart.
इस प्रकार के जो लीन होना है वो हमारे हृदय को शुद्ध बनाता है.
Whatever we do in our devotional life should not simply be done in a ritualistic manner.
भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं उसको सिर्फ एक रीति के रूप में नहीं करना चाहिए.
In every activity, we should very sincerely be struggling to absorb our consciousness in what we are doing.
हम जो भी कार्य करते हैं हमें संघर्ष करना चाहिए कि उसमें हमारी चेतना लीन हो जाए.
Because Krishna manifests himself in the activities of devotional service.
क्योंकि कृष्ण भगवान जो है भक्ति के कार्यों में प्रकट होते हैं.
And to the degree we are able to absorb ourselves in the process, to the same degree Krishna purifies our heart. purifies our consciousness.
Jitna zyada hum bhakti karyon mein leen hote hain utna zyada Krishna hamari chetna ko shuddh banate hain.
When we read about Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, how much they were absorbed in every aspect of devotional service.
Jab hum Sri Chaitanya Mahaprabhu aur unke sangiyon ke bare mein padhte hain to hum dekhte hain kitne zyada wo leen rehte the bhakti karyakalapon mein.
Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna, is teaching us how to be a devotee by his actions.
Sri Chaitanya Mahaprabhu, jo Krishna hai, apne karya se sikha rahe hain kaise bhakt banna chahiye.
And similarly his associates.
Aur unke sahachar bhi.
So we find when Lord Chaitanya would go to the temple of Jagannath, how he would be absorbed in seeing the deity.
हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो कैसे लीन हो जाते हैं भगवान के विग्रह को देखने
में. He and his devotees, they just didn't go and bow down and offer some dakshina and leave.
ऐसा नहीं कि उनके भक्त जाते हैं और प्रणाम करके दक्षिणा लेके बाहर आ जाते हैं.
Rather, they were completely absorbed.
बल्कि वो पूर्ण रूप से लीन हो जाते.
As soon as the conch shell would blow in the morning, Chaitanya Mahaprabhu and his associates would immediately get up and go to the temple of Jagannath.
जैसे ही शंकर बजता चैतन्य महाप्रभु उनके सहज तुरंत उठकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते.
They understood this is Krishna, Balaram, Subhadra.
वो ये समझते कि कृष्ण बलराम और सुभद्रा.
Sometimes they would stand with unblinking eyes and tears rolling down their faces.
कभी कभी वो भगवान के रूप को देखते रहते बिना पलकी के झपकने के और आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहा.
Immersed in the thought.
उनके विचारों में लीन होते.
And how great devotees like Madhavendra Puri, how he worshipped the deity.
कैसे माधवेंद्र पुरी वो कैसे विष्णु की आराधना करते.
He was willing to risk his entire life just to bring some chandan to cool the form of the deity.
और वो अपने जीवन को भी जोखिम उठाने के तैयार थे भगवान के लिए चंदन ले आने के लिए.
There was no question of idol worship.
और ये ऐसा नहीं कि खाली कोई पत्थर की पूजा है.
You do not risk your life and walk 1,000 kilometers for a statue.
आप कहीं किसी पत्थर के लिए 1,000 kilometers चलकर नहीं जाएंगे.
He was seeing the Supreme Personality of Godhead.
वो जो है स्वयं भगवान को देख रहे.
He was personally reciprocating with him.
जो कि उनके साथ आदान प्रदान कर रहे थे.
So in the neophyte stage, we may not have this realization.
कनिष्ठ अवस्था में हमारे अंदर ये साक्षात्कार नहीं होगा.
But as we approach Krishna, he reveals himself accordingly.
जैसे हम कृष्ण के सामने प्रकट होते हैं उसी प्रकार से कृष्ण हमारे सामने आते हैं.
If we approach Krishna as a person, then he will reveal himself as a person.
जब हम कृष्ण को व्यक्ति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं.
If we approach him as a piece of stone, he will reveal himself as a piece of stone.
जब हम कृष्ण को पत्थर के रूप में जाते हैं तब कृष्ण हमारे लिए सामने पत्थर के रूप में रहते हैं.
चैतन्य महाप्रभु वाज एट रथ यात्रा, ही एंड हिज डिवोटीज, हाउ वर दे लुकिंग अपॉन द डीटी.
जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में थे वो और उनके भक्त कैसे विग्रह का दर्शन करते.
हाउ दे वर डांसिंग, हाउ दे वर चैंटिंग.
कैसे वो कीर्तन और नृत्य करते.
दे वर हैविंग इंटीमेट लविंग पास्ट टाइम्स विद द डीटी.
और उनका यह भगवान के साथ बिल्कुल लीला और अंतरंग.
लॉर्ड चैतन्य वांटेड टू टेस्ट जगन्नाथ.
चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की परीक्षा लेते.
So he would go behind the cart.
वो रथ के पीछे रह जाते जामुस को.
Just to see is जगन्नाथ remembering me?
देखने के लिए क्या भगवान जगन्नाथ मेरे को याद कर रहे हैं.
Will he continue on his journey to Gundicha without me?
क्या वो मेरे बिना गुंडीचा मंदिर तक चले जाएंगे.
And जगन्नाथ would stop.
और जगन्नाथ भगवान रुक जाते.
And even though thousands of people were pulling the ropes, they would not move.
हजारों लोग रस्सी खींच रहे होते लेकिन रथ नहीं चलता.
They didn't know what to do.
उनको पता नहीं था क्या करना.
जगन्नाथ would not move his cart. The wheels were locked.
भगवान जगन्नाथ जो है रथ आगे नहीं बढ़ता है जैसे कि पहिए बस फंस गए ऐसे लगता.
Lord Chaitanya was then satisfied. He came in front of the cart and started dancing in front of Jagannath, and then Jagannath began to move.
चैतन्यप्रभु संतुष्ट हुए वो भगवान जगन्नाथ के सामने आए नृत्य करने लगे और फिर रथ चलने लगा.
लॉर्ड जगन्नाथ आईज वर लुकिंग अपॉन द ब्यूटीफुल गोल्डन फॉर्म ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु.
भगवान जगन्नाथ की सुंदर आंखें जो है चैतन्य महाप्रभु के सुनहरे रूप को देख रहे.
माउथ वाज एक्सटैटिकली स्माइलिंग.
और वो बहुत सुंदर रूप से मुस्कुरा रहे थे.
टू सी द डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य
महाप्रभु के नृत्य को देखकर.
But when we're before the deity and we're dancing and chanting, we're dancing and chanting for their pleasure.
जब हम विग्रह के सामने आते हैं, कीर्तन और नृत्य कर रहे होते हैं, तो उनके आनंद के लिए कर रहे होते
हैं. And by this consciousness, we make very rapid advancement.
और इस चेतना से हम बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं.
It is not that we are trying to show our nice dancing and singing talents to other devotees.
ये नहीं है कि हम दूसरे भक्तों को दिखाना चाहते हैं, मैं कितना सुंदर गाता हूँ, कितना सुंदर नृत्य करता हूँ.
But rather, we are trying to attract the heart of Krishna by our sincere desire to please Him.
बल्कि हम कृष्ण के हृदय को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, प्रसन्न करने की इच्छा से.
So the worship of the deity in the temple is a very important part of attracting the mind, the conditioned souls.
मंदिर में भगवान की विग्रह की आराधना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है मन को भगवान की तरफ लगाने के लिए.
The pure souls see Krishna directly.
जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सब कृष्ण को सीधे सब जगह देखते हैं.
And the conditioned soul gradually learn the process of how to see Krishna.
बद्ध जीव जो है वो धीरे धीरे सीखते हैं कैसे कृष्ण को देखना है.
Therefore, even the greatest Paramahamsas, like Sanatana Goswami, Rupa Goswami, and in other sampradayas, Madhvacharya, Ramanujacharya, even Shankaracharya, they all established temples and deities.
इसीलिए जो भी बड़े बड़े परमहंस हैं, सनातन गोस्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने भी बहुत बड़े मंदिरों की स्थापना की.
Because they were very much eager, the people become attracted to the form of the Lord.
क्योंकि वो बहुत उत्सुक है कि लोग भगवान के रूप के प्रति आकर्षित
हों. And in Vrindavan, when Sanatan Goswami built his temple, it was the highest, most beautiful temple.
जब वृंदावन में सनातन गोस्वामी ने मंदिर बनाया तो वो सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर मंदिर था.
And Shri Rupa Goswami built the highest, most beautiful temple.
और रूप गोस्वामी ने सबसे ऊंचा सबसे सुंदर मंदिर
बनाया. The idea is to make such a wonderful facility to get people to take serious who is living within this temple.
ये इसलिए का उद्देश्य ये है कि लोग गंभीरता से पता चले कि कौन व्यक्ति यहाँ पर निवास कर रहा है.
It took years and years and so much efforts to build Govindaji Mandir.
गोविंदजी मंदिर बनाने में कई वर्ष लगे.
And such pure, morally high life souls who were so deeply philosophical, they were the ones behind it.
और जो बहुत ही दार्शनिक रूप के जो भक्त थे वो उनके लिए जिम्मेदार थे.
So naturally, when a person comes to the temple, he will think, who is this built for?
जो कोई व्यक्ति जब मंदिर में आएगा तो कहने लगेगा ये किसने बनाया.
We must take very seriously.
हमें गंभीरता से उसको सोचना चाहिए.
From a material standard, it's very amazing.
वर्ते के देखने तो बहुत आश्चर्य की बात है.
An example.
एक उदाहरण.
In South Africa.
दक्षिण अफ्रीका में.
श्री प्रभुपाद devotees built magnificent temple.
श्री प्रभुपाद के भक्तों ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया.
They probably spent maybe about 50,000 rupees. To buy the deity.
मूर्ति को खरीदी करने के लिए उसने 50,000 रुपए खर्च किए.
And about 10 crores to build a house for the deity.
और घर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए.
So one is thinking, how is this?
तो एक सोचेगा ये कैसे?
By material standards, if you're thinking he's a piece of marble, then it doesn't make sense.
अगर आप मूर्ति सिर्फ पत्थर का टुकड़ा है तो ज्यादा अर्थ नहीं होता.
But if you understand how the Lord has been invoked to enter into this form of the Lord, then it's Krishna. It's not, we cannot judge by some material standards.
लेकिन अगर आप समझोगे कि ये जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसको भौतिक स्तर पर नहीं समझो मानोगे.
And in this world, everyone is attracted to something beautiful.
और इस दुनिया में कोई कोई सुंदर चीज से आकर्षित होता है.
And our minds are very much absorbed in what is beautiful.
और हमारा मन कोई भी सुंदर चीज के प्रति बहुत आकर्षित होता है.
Men and women, they decorate themselves so elegantly just to attract people's minds.
पुरुष और स्त्री बहुत सुंदर रूप से अपने आप को सजाते हैं दूसरों के मन को आकर्षित करने के लिए.
in the United States of America, which in many ways sets the trends of materialistic society, there is an event called the Academy Awards.
अमेरिका में जो कि जगह है जहां से बहुत सारे प्रवृत्ति शुरू होते हैं एक एकेडमी अवार्ड होता है
where they give these trophies of awards it's considered the highest award for entertainers
जो कि एक ट्रॉफी दी जाती है जो कि सबसे ऊंचा जो इनाम माना जाता है मनोरंजन करने वालों के
and the whole talk of the entire country is what everyone was wearing on that night
और पूरी बातचीत यही होती है कि व्यक्ति ने क्या कपड़े पहने थे
It's true. The television, the radio, the newspapers, the magazines, they're all talking about what this actress was wearing and what this actor was wearing.
और न्यूज़पेपर टेलीविजन सब में आता है कि ये जो एक्टर है एक्ट्रेस है क्या वस्त्र धारण किए हुए
They spend hundreds and thousands of dollars sometimes just on a dress and jewelry.
कई बार हजारों डॉलर वो खर्च करते हैं वस्त्रों पर और आभूषण पर
And most people who watch the show on international television, they don't care who wins the awards. They just want to see what everyone is dressed like.
और अधिकांश लोग ये देख रहे थे वो ये नहीं कि कौन जीत रहा है वो ये देख रहे हैं कि किसने कैसे वस्त्र पहने
And according to how they are dressed, that sets the fashion for the whole nation.
और कैसे उन्होंने वस्त्र धारण किए पूरे देश के लिए फैशन हो जाता
है सो दिस इज ह्यूमन नेचर
ये मानव स्वभाव है
When I was a young boy, the President of the United States and his wife, whatever they would wear, that would be the fashion of the whole nation.
जब मैं नौजवान था उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट उनके पति जो वस्त्र पहनते वही फैशन हो जाता
And even in India, when you see these marriages, people dress so crazy.
भारत में भी हम देखते हैं कि विवाह में लोग कितने पागल होते हैं.
So this is the propensity of a conditioned soul to be attracted to a beautiful person who is dressed very nicely.
ये बदलने की प्रवृत्ति है कि उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना जितने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए
सो कृष्ण इज सो मर्सीफुल ही कम्स डाउन टू द लेवल दैट वी कैन रिलेट टू हिम
कृष्ण बहुत दयालु है वो उस स्तर पर आते हैं जिससे हम भी उनके साथ आदान प्रदान कर सकते
देयरफॉर इन द टेंपल वी ड्रेस हिम ही वेरी वेरी नाइस
इसलिए मंदिर में भगवान को बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है
एंड व्हेन कृष्ण इज वर्शिप्ड एंड ड्रेस्ड एंड डेकोरेटेड सो नाइसली पीपल आर वेरी मच अट्रैक्टेड
और जब कृष्ण बहुत सजाए जाते हैं तो लोग बहुत आकर्षित होते हैं
वी एब्जॉर्ब आवर कॉन्शियसनेस इन द फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड
हम भगवान के रूप में अपनी चेतना को लीन कर देते हैं
दैट एब्जॉर्प्शन प्यूरिफाइज अस
और उससे हम शुद्ध हो जाते हैं
इट्स लाइक श्री प्रभुपाद वंस व्हेन ही केम टू न्यू वृंदावन ही लुक्ड एट श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज ही वाज सो मच एक्स्टैटिक टू सी राधा एंड कृष्ण
पिछले प्रभुपाद न्यू वृंदावन में आए तब उन्होंने राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करने पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे
What he was seeing is something that we were not seeing.
वो जो चीज देख रहे थे वो हम नहीं देख पाए
But he told us that राधा एंड वृंदावन चंद्र दे आर सो मर्सीफुल
वो कहने लगे कि राधा और वृंदावन चंद्र बहुत दयालु हैं
दे हैव अपीयर्ड लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल अमेरिकन बॉय एंड गर्ल जस्ट टू अट्रैक्ट द हार्ट्स ऑफ ऑल द अमेरिकन
सारे अमेरिकन को आकर्षित करने के लिए राधा और कृष्ण एक अमेरिकन युवक और युवती के रूप में प्रकट हुए
एंड इन पेरिस ही नेम्ड द डीटीज राधा पेरिस ईश्वरा
पेरिस में उन्होंने डीटी का नाम रखा राधा पेरिस ईश्वर
ही सेड थ्रू आउट द वर्ल्ड द फ्रेंच लेडीज ऑफ पेरिस आर वेरी फेमस फॉर बीइंग ब्यूटिफुल
पूरी दुनिया में फ्रेंच की स्त्रियां जो है सुंदर होने के लिए बहुत मशहूर होती हैं
They are always very much trying to attract the hearts of men from everywhere.
वो सब जगह से पुरुष के मन को आकर्षित करना चाहते हैं.
But श्रीमती राधा रानी, she has appeared as the most beautiful French girl.
श्रीमती राधा रानी सबसे सुंदर फ्रेंच युवती के रूप में प्रकट हुई.
And she has appeared here in Paris in her most beautiful form just to attract the heart of Krishna.
और यहां वो पेरिस में प्रकट हुए कृष्ण के मन को आकर्षित करने के
एंड कृष्ण हैज अपीयर्ड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्रेंच बॉय
और कृष्ण जो सबसे सुंदर फ्रेंच युवक के रूप में
and together they will attract all the French people.
दोनों मिलकर सब फ्रेंच लोगों को आकर्षित करेंगे.
Therefore, Radha Paris Ishwara. So Srila Prabhupada was very concerned that the deities be worshipped with great, great devotion.
Srila Prabhupada ji ko bahut ichha thi ki murti jo hai bahut dhyan se uski aradhana ki jani chahiye.
And that the standard of the worship be very strict.
Aur uska bahut uncha star ho.
Because if it is not very strict, then people will think it to be idol worship.
Aur agar hum bahut strict star nahi rakhenge to log samjhenge ki patthar ki pooja hai.
Srila Prabhupada explained that the difference between statue and deity worship.
Srila Prabhupada ji batate hain ki patthar mein aur vigrah ki aradhana mein kya antar hai.
He explained there was a big statue of a famous political leader in the streets of Calcutta.
Aur wo bata rahe the ki Calcutta mein kisi ek leader ka ek aisa putla tha.
And the only worship he was getting all year was the pigeons.
के साल में पूजा जो थी वो कबूतर के द्वारा किया
they were making their offerings on him every day.
रोज इतना ऑफरिंग
Does anyone have any questions? What kind of offerings?
किसी को प्रश्न है कैसा भोग लगाते हैं
And once a year, on the birthday of that person,
एक दिन जब उस व्यक्ति उतने का जन्मदिन होता
the municipal brushes that brush the streets
वो म्यूनिसिपल की जो है वो सफाई कर देते ऊपर से
they were given abhishek by just rubbing all the pigeon stool off
और वो जो रस्ता सफाई करने वाला था वो उसके ऊपर से कबूतर का सब साफ करते
थे and thousands of people would gather around and they would put big garland on him
और हजार लोग इकट्ठे होकर उसके ऊपर एक माला डालते
and then the rest of the year he was given to the worship of the pigeons.
और बाकी वर्ष जो है वो कबूतर की आराधना करे
So this is idol worship.
ये एक पुतले की पूजा है
But if we're actually understanding that God is everywhere.
अगर हम वास्तव में समझ रहे हैं तो भक्ति भगवान सब जगह पर है
That God is merciful.
वो बहुत दयालु
Just to help us. To focus and absorb our attention on him and offer personal services to him. The Lord can manifest himself in the form of the murti.
हमारे मन को केंद्रित करने के लिए हमारे आराधना को स्वीकार करने के लिए भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट होते
And if it is performed very strictly, with great care and devotion, then when people come, they can understand that these people are actually seeing God here.
और अगर बड़े ध्यान से आराधना की जाती है तो जब लोग दर्शन के लिए आते हैं तो समझेंगे कि ये लोग उनको भगवान देख रहे हैं यहाँ पर
So this is very important.
ये बहुत महत्वपूर्ण है
We want to absorb our own minds and we want to absorb everyone's minds.
हम अपने मन को लीन करना चाहते हैं और दूसरों के भी मन को उसमें लीन करना चाहते हैं
Also within a community, Krishna is supposed to be the center of all interrelationships.
और एक समुदाय में जो है कृष्ण जो केंद्र होने चाहिए सब रिश्तों के
So the deity is natural that everyone lives only for him.
ये स्वाभाविक है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ विग्रह के लिए जीवन बिता रहा
Just like in Bombay. To the degree everyone is living for Radha Gopinath and working together for Radha Gopinath, we are all united and we're all Krishna conscious.
जैसे बॉम्बे में जो है जितना ज्यादा लोग श्री राधा गोपीनाथ के लिए कार्य करते हैं और एकत्रित रहते हैं उसी तरह से हम एकत्रित सेवा कर सकते हैं
That focus is very sacred.
वो केंद्र बनाना बहुत पवित्र है
Very unifying and very absorbing.
उससे एकत्रीकरण भी होता है और चेतना भी लीन हो सकती है
Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees would visit various temples, how they were absorbed in worshipping and loving the deities.
Sri Chaitanya Mahaprabhu and his bhakta anek mandiron ka darshan karke to kis prakar se itna
So many of you have the murti in your homes.
Aap mein se kai hai jinke ghar mein murti hai.
This is how you should feel.
Is tarah se aapko anubhav hona chahiye.
I remember in Udupi, one time they offered a crown to Udupi Krishna he's about this big
mujhe yaad hai ki ek bar Udupi Krishna ko ek mukut arpan kiya gaya wo is size ke
they offered him all diamonds
aur sab hire ka mukut arpan kiya
it cost 2 crores
2 crore rupaye ki kimat thi
Hare Krishna so people were criticizing
to kai log ninda kar rahe the
that what are they doing? They're putting 2 crores of rupees on this deity's head. They could be using this money to be feeding poor people. They can be using it to build hospitals. Why are they wasting it like this? So this was in newspapers. So one of the acharyas of this mutt, his name was Palimar Mutt Swami. Now he's probably almost 90 years old. He gave a very nice example. He said, when the Prime Minister goes from one place to another, if you take everything into consideration just for his security, they probably spend crores of rupees. All the military, the special planes, the special arrangements, holding up the airports, canceling flights. Literally, any head of state, president of any country, when they travel, they spend crores of rupees just for his security. And he said, in here, as Prime Minister of one little tiny speck of one country, of one planet within the universe, and there are millions and billions of such universes. And when all these heads of states spending crores and crores of rupees just to for their safety, no one complains.
और जब इनके लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तब कोई कंप्लेन नहीं करता.
But Krishna, he is the supreme prime minister, not of one country, not of one planet, not of one universe, not of just the material existence, but all creation.
और कृष्ण जो है वो परम भगवान जो है वो न केवल एक देश के बल्कि न केवल ग्रह के बल्कि ब्रह्मांड के न केवल भौतिक बल्कि सब.
And once in 10 years we buy a crown and everyone is complaining. To be spending hundreds and thousands of crores every day, it's not enough for
Krishna.
We should simply do what we can. And if you water the root of the tree, automatically the tree is satisfied.
हम उतना ही करें जितना हम कर सकते हैं और अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो अपने आप पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा.
So this is the consciousness of absorbing ourselves and understanding that Krishna is a person. Krishna has appeared in the murti just to reciprocate with our love. Therefore it should not be done ritualistically. It should be done very personally, very strictly, and very lovingly. So in your homes, you should have this consciousness. To the degree you have this consciousness, to that degree, you will become purified. When you invite Krishna into your home, do not think that it's just a formality. It's a serious commitment. And as you approach the Lord will purify your heart accordingly. It is explained here that the worship of the deity is one of the 5 very, very important principles of devotional service. Through Rupa Goswami, Lord Chaitanya explained these 5. If we follow them carefully, we will naturally make very, very rapid
advancement.
The first is to chant the holy names of the Lord. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
This is the Yuga Dharma. Ultimately, everything in devotional service is aimed at establishing the proper consciousness by which we can chant his holy names.
Antatah bhakti hum jo bhi karte hain uska uddeshya hai sahi chetna ko sthapit karna jisse hum naam jap kirtan kar sake.
Because the name of the Lord is the form of the Lord that we can take with us everywhere and anywhere.
Bhagwan ka naam roop jo hai wo aisa vigrah hai jisko hum kahin par bhi lekar ja sakte hain.
There are no hard and fast rules.
Iske liye koi kathor niyam nahi.
Whether you're in the bathroom or whether you're in your bed trying to sleep, any situation, even if you're unclean, you can't worship the deity in those situations. But you can always chant his name.
आप किसी भी जगह पर हो, चाहे बाथरूम में हो या सोने का प्रयास कर रहे हो, अगर आप अशुद्ध हो तो भी आप भगवान का नाम ले सकते हो.
And the Lord's name is invested with all of his potencies.
और भगवान के नाम में उसकी सारी शक्तियां निहित हैं.
The Lord's pastimes, qualities, form, the Lord's mercy is all contained within his name.
Bhagwan ke naam mein sab roop, leela, gun, sab kuch usi mein.
The holy abode of Vrindavan is within the name of Krishna.
Bhagwan Krishna ke naam mein Vrindavan dham hai.
So we should chant very, very sincerely.
Humko bahut acche dil se naam jap karna chahiye.
What is the meaning of Yuga Dharma?
Yuga Dharma ka arth kya hai?
It means in this particular age, it's the only means by which we can attain that most essential principle of pure consciousness.
So what I mean is, this yuga me, yehi tarika hai jisse ki hum apni chetna ko shuddh bana sakte.
Hari nama, Hari nama, Hari nama, eva kevalam kalo naaste, vanaaste, vanaaste, eva kathe vanyata. There's no other way.
Aur koi dusra tarika hai nahi.
And because people are so fallen in this age, a process by which anyone and everyone can do without difficulty. Even a child loves to chant and dance. And thus their consciousness becomes purified. And everything we do, it's real spiritual perfection is to the degree we are chanting the name as we are doing it.
Aur koi bhi cheez karte hain uski purnata yeh hai ki kaise hum naam jap kar rahe
hain. According to our Vaishnava scriptures, any offering is accompanied by the chanting of the holy name.
Aur Vaishnava shastra mein sab koi bhog arpan karte hain uske sath bhagwan ka naam kirtan hota hai.
So Lord Chaitanya and his associates, by their example, they taught that japa should be done very strictly according to regular minimum rounds of Harinam.
Chaitanya Mahaprabhu ke sarjana sikhaya hai ki naam jab jo hai woh saktai ke sath kiya jana chahiye aur gin kar kiya jana chahiye.
Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they would chant minimum 2 lakhs every day.
Rupa Goswami, Sanatan Goswami, 2 lakh Bhagwan ke naam kam se kam jap karte.
Raghunath Das Goswami also.
Raghunath Das Goswami.
Very strict. Haridas Thakur, he wouldn't eat or drink until he completed 3 lakhs of names every day.
Haridas Thakur jo hai jab tak 3 lakh jab pura nahi karte tab tak kuch khate nahi, kuch peete nahi.
And Sri Chaitanya Mahaprabhu would also very carefully count his japa.
Sri Chaitanya Mahaprabhu bade dhyan purvak apna jap ginti karte.
Just to teach by example how important it is.
Ye sikhane ke liye kitna zyada ye mahatvapurna hai.
So when we are chanting, there are basically 3 types of chanting. There is japa, bhajan, and kirtan.
When we take Bhagwan's name, there are 3 types: japa, bhajan, and kirtan.
They are all very important.
These 3 are important.
Sankirtan is the congregational chanting and dancing where we are together chant very loudly.
Sankirtan का मतलब है जब हम एक साथ होते हैं और बड़े उच्च स्वर में गाते हैं कीर्तन और नृत्य.
This creates social unity.
इससे सामाजिक एकत्व भावना जागृत होती है.
यही जो क्वारल एंड हिपोक्रेसी
जो कि कलयुग का युग है जिसमें झगड़ा होता है.
इट आल्सो प्यूरिफाइज द एंटायर वर्ल्ड.
इससे पूरे दुनिया शुद्ध हो जाती है.
बिकॉज़ द नेम इज रिजाउंडिंग एवरीवेयर.
क्योंकि सब जगह पर नाम गूंज रहा है.
प्यूरिफाइंग ऑल लिविंग बीइंग्स.
सब जीवात्माओं को शुद्ध बना रहा है.
एंड इट इज आल्सो अ वेरी यूनिक एंड एसेंशियल वे ऑफ अब्सॉर्बिंग आवर कॉन्शियसनेस इन द होली नेम.
और ये एक बहुत ही जरूरी तरीका है अपनी चेतना को भगवान के नाम में लीन करने के लिए.
सो दोज हु वांट टू मेक एक्चुअल प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मस्ट अब्सॉर्ब देमसेल्व्स इन रेगुलर जापा एंड कीर्तन अमंगस्ट वैष्णव्स.
जो लोग अपनी चेतना को शुद्ध बनाना चाहते हैं उनको नियम पूर्वक अपने जपों में और कीर्तन में अपनी चेतना को लीन करना चाहिए.
इफ वी आर नॉट अब्जॉर्बिंग आवर सेल्व्स इन दीज टू टाइप्स ऑफ चैंटिंग देन वी विल नॉट मेक प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस.
अगर इस तरह से दो प्रकार जप और कीर्तन में अपनी चेतना को नहीं लगा रहे तो हम ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे.
बट एज वी से द की टू ऑल दीज प्रिंसिपल्स इज नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस बट द अब्जॉर्बशन ऑफ द कॉन्शियसनेस विदइन द प्रोसेस.
ये तो मुख्य चीज और तरीका ही नहीं है बल्कि कितना हम अपनी चेतना को उसमें लगा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण.
एज वी आर चैंटिंग एज वी आर वर्शिपिंग द डीडीज वी शुड बी अब्सॉर्बिंग आवर कॉन्शियसनेस इन कृष्ण.
जितना हम जप कर रहे हैं मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो अपनी चेतना को कृष्ण में लगाना चाहिए.
एंड दिस टेक्स एफर्ट फॉर नियोफाइट डिवोटी.
और एक नए भक्त के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है.
फॉर एन एडवांस्ड डिवोटी ऑटोमेटिकली यू अब्सॉर्ब.
और जो भक्ति बहुत आगे बढ़े हैं इसलिए अपने आप उनका मन लीन हो जाए.
मुकुंद सरकार ही वॉज द फिजिशियन फॉर द रॉयल किंग.
वो राजा के लिए वैद्य थे.
व्हेन समवन केम टू शेव द किंग विथ ए पीकॉक फैन.
जब कोई व्यक्ति राजा को जो है मोर का पंख लेकर आया.
इमीडिएटली अपॉन सीइंग पीकॉक फैदर he was so absorbed in krishna he fell unconscious down to the bottom of the stage.
aur jab unhone mor ka pankh dekha to krishna ka smaran hote hue turant gir pade stage ke niche.
that is absorption.
isko bolte hain leen hona.
instantaneous and spontaneous.
bilkul akshamik aur swabhavik.
when chaitanya mahaprabhu would see a cow he would fall unconscious in the remembrance of krishna.
lekin aap jab ek gaay ko dekhte to krishna ka smaran hote hi wo.
When he would see the ocean, he would be absorbed in thinking of the Jamuna.
जब वो समुद्र को देखते तो वो यमुना नदी के विचारों में लीन हो जाते.
When he would see a tamal tree, he would just think of Krishna's color and become completely ecstatic and all transformations would manifest in his body.
जब एक तमाल वृक्ष देखते तो उनको कृष्ण का वर्णन याद आता और सारे प्रेम के लक्षण उनमें प्रकट हो जाते.
Madhavendra Puri, when he would see a dark cloud, he would immediately fall unconscious and then start weeping and crying and trembling, his hair standing on end.
Madhavendra Puri, jab ek badal ko bhi dekhte hai to unki aankhon mein aansu aate hain, unke baal khade ho jate hain, wo behosh ho jate.
What to speak of when they would chant the holy names.
Ab jab bhagwan ka naam lete to kehna hi kya.
So this is absorption.
Isko bolte hain leen hona.
So we are not on this pure platform.
Hum is siddha star par nahi hain.
So it is our tapasya, it is our austerity to force absorption into the virtuous activities of Krishna consciousness.
हमारे लिए तपस्या है कि कृष्ण भावना के कार्यों में जबरदस्ती इस तरह से अपने मन को लीन करना.
As we're chanting, Krishna is dancing on our tongue.
जब हम जप कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं हमारी जीवा पर.
And if we just become attentive, he dances within our heart.
अगर हम ध्यान देंगे तो हृदय में भी नृत्य करेंगे.
But our mind is wandering off to so many other types of songs and so many other thoughts.
लेकिन हमारा मन इधर उधर दौड़ रहा है दूसरे गीतों में और दूसरे विचारों में.
हरे कृष्ण. Where is our absorption?
कहां हमारा मन लीन हो रहा
है? In this material world, Rupa Goswami explains, people are very absorbed in the opposite sex.
उपको समय बताते हैं भौतिक दुनिया में लोग जो पुरुष स्त्री संबंध के विचारों में बहुत लगे रहते हैं.
मानव विवाह मीन्स विद द सेम अब्सॉर्प्शन दैट अ यंग मैन इज अब्सॉर्ब्ड इन अ यंग वुमन एंड अ यंग वुमन इज अब्सॉर्ब्ड इन अ यंग मैन. इफ वी जस्ट अब्सॉर्ब आवरसेल्फ दैट मच इन कृष्णा हाउ प्योरिफाइड वी विल बिकम.
जिस तरह से एक नवयुवक नवयुवती के विचारों में नवयुवक के विचार में रहता है उसी तरीके से अगर हम कृष्ण में मन लगाएंगे तो कैसे हम शुद्ध हो जाएंगे.
So it is very, very important that we have to force our consciousness as a tapasya to absorb itself in the sound of Krishna's name, in the beautiful form of Krishna's deity.
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तपस्या के रूप में अपने मन को जबरदस्ती भगवान के नाम ध्वनि में और भगवान के विग्रह में लगाना चाहिए.
And to the degree we struggle to absorb ourselves in that sound vibration, to that degree Krishna will manifest a purified state of consciousness.
और जितना हम संघर्ष करेंगे उतना ही ज्यादा जो है हमारे कृष्ण प्रकट होंगे हमारी चेतना को शुद्ध बनाएंगे.
द डिफरेंस बिटवीन रिचुअलिस्टिक चैंटिंग दैट इज मैकेनिकल एंड रियल चैंटिंग दैट प्लीजेस कृष्ण इज आवर एंडेवर टू अब्सॉर्ब आवर कॉन्शियसनेस इन द साउंड ऑफ कृष्णस नेम्स.
जो रीति रिवाज के रूप में जब किया जाता है या सच्चा जब करते हैं अंतर यह है कि कितना हम प्रयास करें अपने मन को उस ध्वनि में लगाने के लिए.
The second principle is to associate with devotees and serve them as far as possible.
दूसरा सिद्धांत है भक्तों का संग करना और जितना हो सके उनकी सेवा करना.
This should also be a process by which we absorb our consciousness.
ये भी एक तरीका होना चाहिए जिससे कि हम अपनी चेतना को लीन करें.
Preliminary to any other spiritual progress, we must have the association of sincere devotees.
सबसे मूल चीज है कोई भी अध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भक्तों का संग प्राप्त होना.
The association of devotees creates an environment by which we can practice real spiritual life.
भक्तों का संग जो ऐसा माहौल पैदा करता है जिससे हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकते हैं.
Srila Prabhupada warned us, as did Srila Bhakti Siddhanta Saraswati.
Srila Prabhupada and Srila Bhakti Siddhanta Sakaram ko chetana chetavani di.
Anyone who thinks that they can make spiritual advancement without proper association of devotees is insane.
Jo vyakti sochta hai ki bina bhakton ke sang ke pragati kar sakta hu wo pagal hai.
We read about great Babaji's or even someone like Haridas Thakur, who living in a cave in a secluded place is immersed in chanting the holy name.
कभी हम बाबा जी के बारे में सुनते हैं या हरिदास ठाकुर के बारे में सुनते हैं जो गुफा में रहकर भगवान का नाम जप करते थे.
No, we cannot imitate them.
हम उनकी नकल नहीं कर सकते.
Maya will certainly steal away our intelligence.
माया हमारी बुद्धि को छीन लेगी.
And even Haridas Thakur, whenever he had the chance, he was in the association of Advaitacharya, Srivas Thakur, Lord Chaitanya Mahaprabhu. He loved the association of devotees.
और हरिदास ठाकुर भी जब भी अवसर मिलता था अद्वैत आचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह भक्तों के संग में आने का प्रयास करते.
In the purified state, you cannot give up the association of devotees. It becomes the spontaneous absorption of your love.
जब शुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो भक्तों का संग त्याग नहीं सकते, वो स्वाभाविक हो जाता है.
But in the neophyte stage, because of our egoistic mind, sometimes we are not able to appreciate the association.
हम कनिष्ठ अवस्था में होते हैं तो हमारे अभिमानी मन के कारण कभी हम भक्तों के संग का महत्व नहीं समझ पाते.
But it is essential.
लेकिन ये आवश्यक है.
To absorb ourselves in that association.
उस संघ में अपने आप को लीन करना.
And that comes through service.
और वो जो है सेवा के द्वारा.
The importance of association is so much declared in the holy scriptures.
और जो शास्त्र में बहुत उसके संग की महिमा बताई गई है.
चैतन्य महाप्रभु said, if you want to be pure, you have to associate with devotees and not associate with materialistic people. That's the essence.
जैसे आपको बताया, अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं तो भक्तों का संग करो, अभक्तों का संग त्याग करो.
जड़ भारत, he was actually on the preliminary stages of bhava.
जड़ भरत जो है वो करीब करीब भाव अवस्था तक पहुंच गए थे.
He was living Gandaki. I mean, banks of Gandaki River.
वो गंडकी नदी
के तट
पर रहते थे हिमालय में.
All alone.
अकेले.
When he was thinking of Krishna, his eyes were swelled with tears, his hair stood on end and he would tremble.
जब वो कृष्ण के बारे में सोचते थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते, शरीर कांपने लग जाता और बाल खड़े हो जाते.
In such an advanced state, when he saw that little baby deer helpless, he became so much attached to helping that deer.
और इस अवस्था में भी जब उन्होंने छोटे हिरण को देखा तो बिल्कुल आसक्त हो गए उसको मदद करने के लिए.
To serve that deer, he gave up all of his sadhana.
और हिरण की सेवा करने के लिए सब साधना त्याग कर दिया उन्होंने.
Now you may think that it was out of compassion.
आप सोचेंगे ये तो कृपा की भावना से.
But factually, the deer would have died if he didn't take care of it.
अगर उसका ख्याल नहीं रखते तो हिरण की मृत्यु हो जाती.
But that's the way Maya works.
इसी तरीके से माया कार्य करती है.
She puts us in a situation that we succumb to her illusions.
और ऐसी स्थिति रखती है कि हम उसके प्रलोभन में गिर पड़ते हैं.
Now if Bharat Maharaj was living in a brahmachari ashram.
अगर भरत महाराज ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे होते.
Or if he was living in a congregation of devotees he was associating with.
अगर वो भक्तों के संग रहते थे सामूहिक रूप से.
They would have said, Bharat Prabhu, don't be so attached to this deer. Check your rounds.
लोग बोलते तो भरत प्रभु गिरंग में जा सकती है मदद को ठीक से जब करो.
And due to the social pressure, he would have definitely started chanting his rounds.
और सब लोग के बोलने के प्रेशर के कारण वो से जब करना शुरू कर दे.
People would have seen him. I don't see any of your counting beads moving.
मैं देख रहा हूँ आपके मोती नीचे नहीं आ रहे.
I don't even see you in Mangal Arati. You're so completely absorbed in this deer. This is Maya. We'll help you take care of the deer. You come and chant and dance with us. Definitely. He would have said, oh, yes, yes, you are correct. So even if you are on such an elevated platform, Maya will trick you if you don't have the association of devotees to
pray.
But what is very important is how to associate with devotees. Vrindavan Ananda Prabhu told me to speak on this subject today. And it is appearing of its own accord. Association of devotees means in a mood of service. Every other devotee is Prabhu and I am Das Das Anu Das. If we are not in that consciousness, then we're not really associating with devotees. Everyone is servant, no one is master. The various positions we may take in the Varnashram system is all just a particular way to serve.
अलग अलग स्थिति जो हम वर्ण आश्रम में लेते हैं वो सिर्फ सेवा करने के